اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کنٹینیو کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی نواسی کے ساتھ تعلق. یعنی یہاں ہم تعلقات کی گرمی دیکھ رہے ہیں کہ رشتوں میں جب جذبات شامل ہوتے ہیں اور انسان ایسے وقتوں میں پھر اگر تبلیغ کرتا ہے جب دوسرے آپ کی بات کی قدر کرتے ہیں، آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت اپنی بیٹیوں تک ہی نہیں تھی بلکہ بیٹیوں کی اولاد نے بھی اس سے وافر حصہ پایا. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت اور تعلق سب جانتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کے بچے بھی اور بیٹوں کے بچے بھی ہماری محبت کے محتاج ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں نواسیوں سے محبت تھی. بیٹے کو تو اللہ نے اس حد تک عمر ہی نہیں دی نا کہ آپ کے بیٹوں کے بیٹے ہوتے، تو کیا پتہ چلا کہ بچوں سے پیار کرنا چاہیے. یہ پیار بھی ان کو اچھی بات ہم کہیں گے یا برائی سے روکیں گے تو کام آئے گا. کس بات میں؟ کہ چونکہ وہ محبت کی ڈوری بیچ میں ہوگی نا، تو اس کے ساتھ پھر بندھے ہوئے وہ ہماری بات کو ضرور سنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی نواسی امامہ سے پیار اور تعلق کیا تھا، آئیے ایک واقعہ پڑھتے ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو قتادہ سے یہ روایت نقل کی، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی صاحبزادی زینب کی بیٹی امامہ بنت ابی العاص آپ کے کندھے پر بیٹھی ہوتی. کیا ابھی ان کا ذکر آیا ابو العاص کا؟ یونی کی بیٹی ہیں. آپ جب رکوع کے لیے جاتے تو اس کو زمین پر رکھ دیتے، اور جب سجدے سے اٹھتے تو دوبارہ اس کو اپنے شانہ مبارک پر بٹھا لیتے. ابو داؤد کی روایت میں ہے، جب ہم نماز ظہر یا عصر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے اور بلال رضی اللہ عنہ آپ کو نماز کے لیے بلا چکے تھے، تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے. آپ کی صاحبزادی کی بیٹی امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہا آپ کی گردن پر سوار تھی. رسول اللہ اپنی جائے نماز پر کھڑے ہوئے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور وہ اپنی جگہ پر ہی رہی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر ہی سوار رہی. راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے تکبیر کہی اور ہم نے بھی اللہ اکبر کہا. انہوں نے کہا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ نے رکوع کا ارادہ کیا تو اس کو تھاما اور زمین پر رکھ دیا. یعنی جب رسول اللہ نے رکوع کا ارادہ کیا تو اس کو تھاما اور زمین پر رکھ دیا. پھر آپ نے رکوع اور سجود کیا، جب آپ سجدے سے فارغ ہوئے تو اس کو اٹھایا اور اس کی جگہ اپنی گردن مبارک پر بٹھا دیا. رسول اللہ نے نماز سے فارغ ہونے تک اپنی نواسی کے ساتھ یہی طرز عمل اختیار کیا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ کرنا آسان نہیں ہوتا، کہاں ہر رکعت میں اس کو اٹھانا، پھر رکوع میں جاتے ہوئے بٹھا دینا، پھر اٹھانا. تو یہاں سے اللہ کے نبی کی محبت دکھتی ہے. تو سمجھ میں بات آنے والی کیا ہے کہ دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دینا ہے، اچھے کاموں کی رغبت دلانی ہے، تو ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. شاعر اسحاق بن خلف کے بیٹی کے متعلق جذبات کیا تھے، آئیے دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علاوہ دیگر لوگوں کی زندگیوں میں بھی بیٹیوں کے ساتھ تعلق، لگاؤ اور الفت اور مودت کے دلائل اور شواہد موجود ہیں، اگرچہ وہ اخلاص و شفقت کے اس کمال کو تو نہیں پہنچ سکتے. مثال کے طور پر ایک شاعر اسحاق بن خلف نے اپنی بیٹی امیمہ کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا، کہتے ہیں کہ لولا امیمت لم اجزا من الادمی، بیٹی کا نام امیمہ، اگر میری بیٹی امیمہ نہ ہوتی تو میں مفلسی سے نہ گھبراتا اور شدید تاریکی والی راتوں میں سفر کی صعوبتیں برداشت نہ کرتا. یعنی بیٹی کے لیے محنت کرتا ہوں وہ نہ کرتا، اور میرے دل میں زندگی کی رغبت اس بات نے زیادہ کر دی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یتیم لڑکی کو ذلیل سمجھا جاتا ہے اور قریبی رشتہ دار اس پر ظلم کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اپنے لیے زندگی مانگ رہا ہے کہ اگر میں مر گیا تو میری بیٹی یتیم ہو جائے گی اور لوگ اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کریں گے. میں اپنی موت پر اپنی بیٹی کے آنسوؤں کا تصور کر کے خون کے آنسو روتا ہوں. کتنا یونیک انداز ہے نا، یعنی خود اس بات پہ رو رہے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میری بیٹی روئے گی. میں ڈرتا ہوں کہ کسی دن تنگ دستی اس کو آ گھیرے اور وہ اس بے وقت اور کمزور بچی سے پردے کو ہٹا دے. جب مجھے قبر میں دفنا دیا جائے گا تو وہ میری موت کے بعد تا ابد باپ سے فائدہ حاصل نہ کر پائے گی. ہر جملے میں آپ کو محبت کا رنگ دکھ رہا ہے. میں اس کی وہ حالت نہیں بھولتا اور نہ ہی بھولوں گا جبکہ وہ دونوں رخساروں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ مجھے الوداع کرتی ہے، تم باقی رہو اگرچہ ہم مر جائیں، کیونکہ یقیناً ہمارا رب ہے جس نے ازل سے ابد تک کی ذمہ داری لے رکھی ہے. وہ میری زندگی چاہتی ہے اور میں اس پر شفقت کے سبب اس کی موت کی خواہش کرتا ہوں، और मौत औरतों के लिए सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला मेहमान है। क्या मतलब? कि वो मेरी ज़िंदगी चाहती है और मैं उसकी शफ़क़त के सबब इसकी मौत की ख्वाहिश करता हूँ, यानी कि मेरी बेटी मेरे बाद अकेली ना रह जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में चली जाए। मैं इस पर चचा की सख्त दिली और भाई के जुल्म से डरता हूँ, और मेरी तो इसके मुतल्लिक़ कैफियत ये थी कि मैं सिर्फ़ बात के ज़रिए पहुँचने वाली अज़ियत की बिना पर इस पर तरस खाता था। और ये जो इसने बात कही ना कि मैं मर जाऊँ या मेरी ज़िंदगी में मर जाए, ये दुरुस्त नहीं है बात। इस्लाम में किसी की मौत की दुआ नहीं की जा सकती इस तरह से, ये एक एग्जेजरेशन है जो शायरी में हो ही जाता है। तो बहरहाल ये बात तो समझ आ गई। अब आगे बहुत ही क्रिटिकल बात है कि मौजूदा दौर के बाज़ बापों का बेटियों से शदीद ताल्लुक़ क्या है, यानी आज के दौर में बेटी के साथ बाप का ताल्लुक एक तो इन जनरल है, लेकिन यहाँ इस एक ख़ास वाक्य से अब देखें। कोई ये ना कहे कि बेटियों से ताल्लुक़ और लगाव की बातें तो पुरानी किस्से बन चुकी हैं। आज भी हम देखते हैं कि बापों की एक कसीर तादाद बेटियों के मुस्तकबिल की खातिर सर तोड़ कोशिश करते हैं, इनके लिए सफ़र की सऊबतें झेलने और दियारे गैर की जिल्लत और रसवाई बर्दाश्त करने के पस मंज़र में एक अहम सबब यह होता है कि वो इस तरीके से अपने दिल के टुकड़े को शादियों के मौके पर बावकार तरीके से रुख्सत करने के लिए कुछ माल और असबाब जमा कर पाएँ। जब बापों की निगाहों में बेटियों की यह हैसियत और अहमियत हो, तो क्या ये मुमकिन है कि इनका एहतसाब मुशफिक मेहरबान और इतने चाहने वाले बापों पर हमेशा ही बेअसर और बेकार साबित हो? क्या पता चला इस बात से कि बेटियों के साथ ताल्लुक़ में मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो क्या है कि बाप कमाते हैं ताकि हम अपनी बेटियों को अच्छा खिला सके, पिला सके और बाद में उनको अच्छी तरह से विदा कर सके। सारी चीज़ों को एक साइड पे कर दीजिए, ये याद रखिए कि खून के ये जो रिश्ते होते हैं ना, जिनको हम बहुत करीब से देख रहे होते हैं, देखिए बाहर कोई बुरा काम करेगा हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, बट घर में रहते हुए बाप बेटी, माँ बेटी, इतना बराह रास्त ताल्लुक है कि इस ताल्लुक से हम बच नहीं सकते। मसलन आपका बेटा गलत काम करता है, बेटी गलत काम करती है, आप उसे कैसे बचेंगे? तो ये फ़र्ज़ है कि हम अपने घर वालों की खराबी को देखें, डिस्कस करें। हमारे यहाँ दो एक्सट्रीम्स है, एक तो कुछ ना को, नहीं, हम बहुत शरीफ हैं, हम कुछ नहीं कहते, बस जी अब चुप चुप कुछ नहीं बोलना, बस जी ताल्लुक नहीं ख़राब करना, नहीं, बच्चे जो करते हैं उनको करने दीजिए, एक तरीका कार ये है। दूसरा क्या, हर वक्त को, या वो तरीका इख्तियार करो जो दुरुस्त नहीं है या जिससे फ़ायदा नहीं होता। इन दोनों के बीच में जो बात होनी चाहिए, जो मुझे तो हमेशा यही लगता है, जब भी कोई बंदा अपने बच्चों के बिगाड़ की बात लेके आ जाए या कम्युनिकेशन गैप जाए, तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि आखिर क्या कमी है। मतलब आप देखिए ना कि एक बाप अपने बेटे की या एक माँ अपनी बेटी की बात करती है और आपके पास आके कहते हैं आप इसको समझाएं, तो मेरे जहन में सवाल होता है कि आप क्यों नहीं समझा पाई। लोग कहते हैं हमारी सुनते नहीं है बच्चे, क्यों नहीं सुनते हैं? आप कहेंगे अब क्या करें। बस आप देखिए ये जो आपकी बच्ची की एज है ना, इधर बैठी मेरे, ये 5-6 साल की होगी, ये कितने की है? माशाल्लाह 8 साल की बच्ची है ना, 8 साल से ये बच्ची आपके पास है, अल्लाह इसको लंबी उम्र दे, आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया बना है। ये एज है ना, 6 साल पीछे ले जाए तो 2 साल, छोटा बच्चा जब आप उसको बुलाएं और वो रिस्पॉन्ड ना करे, उसी वक्त उसको समझा दें कि बेटा आज ये हुआ, ये नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, मैंने आपको बुलाया आप क्यों नहीं आई, मामा की पहली कॉल पे आते हैं, बात सुनते हैं, मैंने आपको कुछ करने को कहा आपने नहीं किया। ये एज 8 साल की उम्र तक तो बच्चा परफेक्ट लेवल का हो सकता है कि जो कहना है माने, सुनना है, बात माननी है। आप 8 साल तो के बच्चा बच्चा बच्ची बच्ची, 10 साल पे होने पे और भी ज़रा लाड़ ले, 12 साल पे आप कहें कि अभी आपकी हर बात मानने लगे, ये नहीं होगा। बैठ के बात करें, हर एक काउंसलिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। आप क्या चाहती हैं आप भी लिखिए, मैं भी लिखती हूँ, आपको मुझसे क्या शिकवे हैं मैं भी लिखती हूँ, आप भी लिखिए, मुझे आपसे क्या उम्मीदें हैं, क्या मुझे एक्सपेक्टेशन है, आप भी लिखिए मैं भी लिखती हूँ, 1 घंटा लगा लें, आधा घंटा बैठ के किसी एक नतीजे पे निकले, फिर उठे वहाँ से, फिर ऑब्जर्व करें एक दूसरे को। हर वक्त का बोलना, हर वक्त का टोकना, हर वक्त का रोकना, ये बिल्कुल असर ख़त्म हो जाता है। और दूसरी तरफ कुछ नहीं कहना सिर्फ इस डर से कि इन्होंने मानना नहीं है, ये भी हार मानने वाली बात है। देखिए सीधी सी बात है, आज के दौर में जो ब्रॉट अप स्टाइल है, यहाँ का तो अभी बेहतर ही होगा मुझे उम्मीद है, बाहर के लोगों का बच्चों के साथ ब्रॉट अप का स्टाइल क्या है कि जी बच्चों को इंग्लिश आती है, हमें नहीं आती, बच्चे कंप्यूटर चला लेते हैं हम नहीं चलाते, बच्चों को कई ऐसे टेक्निकल इश्यूज पता होते हैं जो हमें नहीं पता बाहर की दुनिया के। इन 3-4 चीज़ों को सामने रख के पेरेंट्स कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, जो मैंने देखा है, कॉम्प्लेक्स मैं बोल रही हूँ, वो नहीं कहते हम कॉम्प्लेक्स में, लेकिन मरूब हो जाते हैं, हर बात में उनको अपने से सुपीरियर समझने लगते हैं। फिर नतीजा क्या होता है कि बच्चे उनकी बात नहीं सुनेंगे। हाँ, आपको ज़्यादा पता होगा, अच्छा स्कूल में ये हुआ था, कॉलेज में ये क्या हुआ था, किसी के साथ इस तरह क्या इशू था। तो मैंने एक जुमला बोला था उस बच्ची को, आई नो योर मॉम डोंट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, नहीं कंप्यूटर चलाना आता आपकी माँ को, उसको इंग्लिश नहीं आती, उसका एक्सेंट बड़ा बुरा है, अगर बोले तो हंसी आ जाएगी, आई अंडरस्टैंड यू आर बेटर देन हर, बट मैंने उसकी माँ से पूछा कि ये बच्ची जब पैदा हुई थी तो आपकी क्या उम्र थी। आपको पता है आज के हमारे कल्चर में चले 18-20 साल की उम्र में शादी हो तो 1 साल बाद बच्ची हो गई। 21 साल की थी मैं जब मेरी ये बच्ची पैदा हुई। मैंने उस लड़की से कहा, मैंने कहा तुम सारी चीज़ें भी यस यस कहती जाओ ना अपनी, बट एक चीज़ में तुम अपनी माँ को बीट नहीं कर सकती, और वो क्या है कि ये तुमसे 21 साल बड़ी है। इनको दुनिया में आए हुए 21 ईयर्स हुए हुए थे जब आप दुनिया में आई, ये फ़र्क आप कभी नहीं मिटा सकती। तो वेयर इज़ 21 ईयर्स एक्सपीरियंसेस, उनका तजुर्बा, उनकी बातें, आपको 21 ईयर बाद वो बात समझ आनी चाहिए जो इनको आज समझ आ रही है। बात समझ रहे हैं? ये जो गैप होता है ना बीच में माँ बाप के और बच्चों का, के एज की वजह से आगे पीछे ना, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। करें क्या इन सारी चीज़ों को, लिमिट्स हैं। मैं खुद सोचती हूँ कि कंप्यूटर को तो हम हाथ नहीं लगाते कभी, कि मुझे नहीं आता चलाना, लोग डर जाते हैं, मैं किसी के घर में जाऊँ पूछूँ पासवर्ड, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, ऐसे लगता है शायद बिजली के तार को हाथ लग जाएगा। चूल्हा चला रहे हैं, खा रहे हैं, पका रहे हैं, कोई हरज नहीं क्योंकि रोज़ पकाते हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं इस्तेमाल की होती उसका डर लगता है। ना चलाएं कंप्यूटर, हमारा गुजारा हो रहा है, ना फ़ोन चलाएं आता है, बट बच्चे वाला या जिनके पास अपने बच्चे हैं, अपने घर वाले, वो उनको तो दिन रात ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन मिस हैंडल कर रहे हैं। तो फिर खुलासा क्या निकला बात का, कि अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात को बहाल करना है हम सब ने, जिस लेवल पे ना उसको जाके रिवाइज करें। आपके बच्चे आपकी सुनेंगे, आप कल ये जुमला बोलें, अपने लिए गोल बनाएं, मेरे बच्चे सिर्फ मेरी मानते हैं। जैसे आप देखिए छोटा बच्चा होता है ना, किसी के पास भी जाएगा रोता रहेगा, लोग आखिर में कहते हैं भाई तुम पकड़ो इसको, पकड़ो मैं कर लूंगी काम, बच्चा माँ की गोद में आएगा चुप हो जाएगा। बाद बच्चे सिर्फ माँ से खाते हैं, लोग कहते हैं भाई आप इनको खिलाइए हम आपके काम कर देते हैं, है ना। ये लेवल लाइए, सारों को ये पता चल जाए, सारे इस बात की गवाही दे, ये सिर्फ आपकी मानता है, ये सिर्फ आपकी मानती है। मेरी नज़र में मोहब्बत का ये बेहतरीन रूप है, चाहे ये बीवी शोहर हो, चाहे भाई बहन है, कोई रिश्ता है, जो बंदा आपकी बात नहीं मानता ना, बस वो एक मोहब्बत का ताल्लुक ठीक है। दिन रात आप उठ के बैठते जी जान फलां करें, कोई बात कहें तो आप नहीं मानते, ये कोई प्यार नहीं है फिर, ये बस ऐसे ही एक वक्त गुजारी है। और आज रिश्तों में इतनी ये चीज़ है, देखिए कि हर बंदा अपने ओन पे फंसा हुआ है। अगला आखिरी पॉइंट है हमारे इस आज के मौजू का, जो अभी तक हमने किया है, क्या कर रहे हैं हम बाय द वे, भूल गए या साथ चल रहे हैं? ख्वातीन का तबलीग में जो अहमियत है उसके डिफरेंट 5 एंगल देखे, अब आखिरी है छठा, क्या है? बहनों का बाज़ भाइयों की निगाह में ख़ास मुकाम, यानी अब भाई बहनें क्या अहम है या भाई बहनों का रिश्ता क्या होता है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। बाज़ भाइयों की नज़र में बहनों की वक्त और हैसियत गैर मामूली होती है, ये नोट कीजिएगा, भाइयों की नज़र में। मैं अक्सर कुरान की क्लास में सूरह कसस में ये जुमला बोलती हूँ, जब हज़रत मूसा की बहन सास सा देख रही थी और मूसा एक बच्चे की सूरत में दरिया में तैर रहे थे, और फिर वो गई और फिर उनके घर वालों को कहती हैं आओ मैं तुम्हें बताऊँ कोई ऐसे घर वाले हैं जिसको पालेंगे, तो उस सूरत में हम भाई बहन के रिश्ते पे बात करते हैं। आज इसमें भी बहुत सारी कमियाँ आ गई, कि बहनों को अपने भाइयों से ज़्यादा मोहब्बत और केयर होती है अपोजिट वे पे। एक होते हैं एबनॉर्मल हालात या एक्स्ट्रॉर्डनरी कंडीशंस, वो भी हो सकती हैं, बस भाइयों को अपनी बहनों से बहुत मोहब्बत होती है लेकिन बहनों को इतनी नहीं होती, हो सकता है। बट फितरत में ये देखिए, बहनें भाइयों का गम ज़्यादा करती हैं, उनकी खुशी ज़्यादा करती हैं, उनके बच्चों से प्यार ज़्यादा करती हैं, भाई इसके अपोजिट वे पे होते हैं। आइए ज़रा इधर पढ़ते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था। रज़ाई बहन से तआमुले मुस्तवी, यानी अल्लाह के नबी का अपनी रज़ाई बहन से क्या ताल्लुक़ था, कैसे आपने उसको डील किया। और रज़ाई बहन तो आप समझते ही हैं, दूध शरीक बहनें, पहले अरब लोग जो थे वो अपने बच्चों को खुली जगहों पे छोड़ते थे, और वो सेहतमंद औरतें देहातों की स्ट्रांग, वो सबके बच्चों को दूध पिलाती थी। आज भी ये सिस्टम करके देखें, ये सब बच्चों की बीमारियाँ दूर होंगी। एक बच्चा अपनी माँ के अलावा अगर किसी और औरत का दूध पीता है, शर्त है कि वो औरत स्ट्रांग हो, जर्री हो, बहादुर हो, उस बच्चे में ज़्यादा खूबियाँ होंगी उस बच्चे की जिस पर जिसने सिर्फ अपनी माँ का दूध पिया। आज अपनी माँ का ही नसीब हो जाए तो बड़ी बात है, वो तो गाय का ही पी लें, तो बकरी का ही पी लें, तो भैंस का ही पी लें, तो और बात है ना। इंसानों का दूध पियेंगे तो इंसानियत आएगी, जानवरों का पियेंगे तो जानवरों वाली बातें आएंगी। तो बहरहाल आपका ताल्लुक था, आप जानते हैं, हलीमा सादिया नाम की खातून ने आपको दूध पिलाया था, उन्हीं की बेटी की बात अब यहाँ आ रही है। शीमा उनका नाम था, रसूलुल्लाह की रज़ाई बहन शीमा या बाज़ जगह शमा, असादिया तू यानी शमा सादिया, सादिया कबीला था बेसिकली, हलीमा सादिया जो हम कहते हैं ना वो इसी से ही है। तवील वाक्या है, इसको मैं आपको उर्दू में पढ़ के सुना देती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारों ने हवाजन कबीले पर हमला किया और इनमें कुछ लोगों को कैदी बनाया। इन्हीं में से ये यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन भी थी, उन्होंने इनसे कहा मैं तुम्हारे साथी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमशीरा हूँ। जब वो इन्हें रसूलुल्लाह के पास लेकर हाजिर हुए, यानी इमेजिनेशन में ला रहे हैं कि एक जगह जंग में एक औरत आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि ये आपकी दूसरी बहन है। जब उनकी खिदमत में हाजिर हुए उस औरत ने कहा कि मैं आपकी बहन हूँ। इसके अलावा उन्होंने अपनी शनाख्त एक निशानी से करवाई जिसके ज़रिए आपने इनको पहचान लिया। फिर आपने इन्हें खुश आमदेद कहा और इनके लिए अपनी चादर बिछा कर इन्हें इस पर बिठा दिया और आपकी आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने इनसे फरमाया अगर पसंद करो तो इज्जत व मोहब्बत के साथ हमारे साथ क़याम कीजिए और अगर अपनी कौम के यहाँ वापस जाना चाहो तो हम आपको वहाँ पहुँचा देते हैं। उन्होंने कहा बल्कि मैं तो अपनी कौम की तरफ पलटती हूँ। वो मुसलमान हो गई और रसूलुल्लाह ने इन्हें 3 गुलाम, 1 लौंडी और भेड़ बकरियाँ अता फरमाई। क्या पता चला? रज़ाई बहन की भी आपने इज्जत की तो क्या पता चला कि भाई बहनों के रिश्ते में मोहब्बत का उनसर है। मौजूदा दौर के बाज़ भाइयों का बहनों से लगाव, कोई ये ना समझे कि बहनों से ताल्लुक़ और इनकी इज्जत और तकरीम ज़माना माजी ही की बात है। मौजूदा दौर में भी ऐसे बाज़ भाई नज़र आते हैं कि किसी की बात का सुनना मानना इनकी किताबें ज़िंदगी में बहुत कम होता है, लेकिन अपनी प्यारी बहनों के सामने सरापा समावतात दिखाई देते हैं। सरापा समावतात क्या होता है? सुन के मानने को, यानी बहन की बात सुन के फ़ौरन मानते हैं। बाय द वे, आपका अपने भाइयों के बारे में क्या ख्याल है? कितनी सिस्टर्स आप में से कहती हैं कि उनके भाई उनकी बात बहुत मानते हैं? आपकी भी मानते हैं, तो फिर आपको अपने भाइयों को तबलीग करनी चाहिए। कौन कहते हैं मेरे भाई मेरी नहीं मानते? चलिए, और कितने ही भाई ऐसे भी हैं जो बापों की माने सफ़र की इस मुसीबतों और परदेस की मुशक्क़तों और अजियतों को बर्दाश्त करते हैं, और इनके मकासद में से एक अहम मकसद ये होता है कि बहनों की रुख्सती के मौके पर कुछ साजो सामान मुहैया करने के वसाइल दस्तियाब हो जाएं। यानी बाप न रहें तो फिर भाई बहनों के लिए खिदमत करते हैं, उनकी कोशिश करते हैं। क्या इस किस्म के भाई हमेशा ही अपनी प्यारी और अजीज़ बहनों के इख्तसाब को नज़रअंदाज करते रहेंगे? क्या पता चला कि भाई और बहन भी एक दूसरे को अच्छे बातों का हुक्म दें और बुराई से रोकें? कितनी बहनें जो अपने भाइयों को नेकी का हुक्म देती हैं। देखिए, ये लफ्ज़ हुक्म मुझे कभी भी नहीं अच्छा लगा, ये तो एक ऑफ़र होती है। आप हुक्म तो नहीं दे सकते कि उठो नमाज़ पढ़ो। ये भी नोट करें, जब हम दूसरों को अच्छे बात करने वाली बात की रग़बत दिलाते तो अंदाज़ में ये नहीं कहते उठो नमाज़ पढ़ो, चलो बाहर कुरान पढ़ो, अब ये हुक्म है सारे। नहीं, नमाज़ पढ़नी चाहिए, किस चीज़ का वक्त है, उठो बेटा, उठो भाई। हमेशा न्यूट्रल सीखे बोले, यानी कभी डूज ना बोलें। इंसान की तबीयत पे बोझ आता है, कोई आपको भी कहता है उठो, कोई आपको कहता है खा लो, ये सब अमर है, फेले अमर यानी हुक्म वाला अमल है, ये अच्छा नहीं लगता लोगों को। क्या कहें? आइए खाएं, इनवाइटिंग स्टाइल है, आइए खाते हैं ना, खाएंगी आप, खाने का वक्त है। अब देखिए एक ही बात है, जब कहें ना खाओ तो अंदर से एक जोश उठता है कि इन्होंने मुझे खाने को कहा मैंने नहीं खाना। तो हमें अपने लफ्ज़ों को वॉच करना चाहिए, किसी से भी बात करें। हम अपने स्कूल में जब भी स्टाफ को साथियों को ट्रेनिंग देते हैं तो वहाँ हमेशा यही बात करते हैं कि आपकी बात में हुक्म का अंदाज़ नहीं होना चाहिए, सजेशन दें, बात वही होती है, सिर्फ उसका अंदाज़ फ़र्क होता है। ये कहते हैं कि यहाँ 3 बातों की तरफ तवज्जो कीजिएगा। नंबर 1, माओ बीवियों बेटियों और बहनों की जिस वक़्त और अहमियत का जिक्र पिछले सफ़ों में किया गया, इससे ये मकसूद नहीं था कि ये सब औरतें अपने बेटों खामदों बापों और भाइयों की नज़र में यही हैसियत रखती हैं। यानी वही बात है कि अगर माँ बीवी बेटी और बहन अहम है तो ज़रूरी नहीं कि सब बाप और भाई और खामंद भी उनको अहम समझें। دوسری بات ہے کہ خواتین پر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فرضیت کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ان ساری باتوں کی اہمیت اور حیثیت رکھتی ہوں، مردوں کی نگاہ میں ان کی حیثیت ہو یا نہ ہو، ہر دو صورت میں نے فریضہ احتساب ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ ان کا جواب ہے جو یہ کہتی ہیں نہیں ہمارے تو بھائیوں کے تعلقات ہی نہیں اچھے، وہ تو ہماری سنتے ہی نہیں ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں پھر بھی ان کو بھی بری بات سے روکنا اور اچھی بات کا حکم دینا۔ سابقہ گفتگو سے یہ بھی مقصود نہیں کہ مذکورہ بالا حیثیت حاصل ہونے کی صورت میں خواتین کے احتساب کے متعلق ذمہ داری میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اس اہمیت سے خوب فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کے احتساب کے زیادہ زوردار، قوی اور گہرے اثرات والا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کیا پتہ چلا یہ سب کچھ پڑھنے کے دوران، یعنی اب یہاں ہمارا وہ مین ٹاپک پورا ہوا ہے الحمدللہ۔ میں سب کو سم اپ کرنا چاہوں گی کیونکہ اب اس کے بعد اینڈ تک ہم واقعات پڑھیں گے، اور آپ کو پتا ہے کہ پریکٹیکل اگزامپلس بہت اچھی ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ڈرامے فلمیں اس نام سے دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں اس کے ذریعے سے سبق ملتا ہے، سبق آموز ڈرامے، ہاں گھریلو کہانیاں، تو واقعات کا رنگ جو ہوتا ہے وہ اس کی تاثیر بہت ساری ہوتی ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کو جو ابھی تک ہم نے کی ہیں اس کو اگر ہم سم اپ کر لیں تو خلاصہ کیا ہے؟ کسی کو غلط کام کرتے دیکھ کر خاموش رہنا، اس کا احساس نہ دلانا، یہ محبت نہیں ہے۔ ایک بات، یعنی کوڈ ورڈز بول رہی ہوں جو ہم نے دو دن میں کور کی ہیں ابھی تک، کبھی بھی کسی کو آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے کہیں تو دوسری چیز اہم کیا ہے کہ آپ کا انداز کیا ہے۔ اگر میں یہ کہتی ہوں نا کہ فلاں میری بات نہیں مانتا، میں اٹھاتی ہوں کوئی نہیں اٹھتا، میں بتاتی ہوں کوئی نہیں مانتا، تو میں چگلی کھا رہی ہوں اس بات کی کہ مجھے کہنا نہیں آتا، میں نے کوئی ایسی ٹون استعمال کی ہے جو انسانوں کو پسند نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، چپ نہیں رہنا، مجھے آپ کو دوسروں میں غلط چیز دیکھ کر چپ نہیں رہنا، نہیں چپ رہنا۔ ہم اپنی فیملیز اور اپنے ارد گرد والوں میں جب غلط چیزیں دیکھتے تو ہم کہتے ہیں ہم کیوں برے بنے، یہ صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ جی سسٹر،
ابھی آپ نے کہا کہ امر کا یعنی حکم کا لفظ مجھے پسند نہیں ہے، تو قرآن مجید میں دعوت کے لیے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کیوں اس لفظ استعمال کیا؟
دیکھیے امر کے تین درجے ہوتے ہیں، جب آپ گرامر میں فعل پڑھتے ہیں نا امر کا، تو تین درجے ہوتے ہیں، ایک تو نا حکم، لیکن ایک ہوتا ہے چاہیے، اٹ شوڈ بی، کہہ تو آپ ان کو یہی رہے نا، نماز پڑھو، یہ جملہ بولیں گے تو حکم ہے، اور آپ کہتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے، یہ بھی حکم ہی ہے لفظ عربی میں، لیکن اس کو چاہیے کہتے ہیں، بات سمجھ گئے؟ موقع محل کے مطابق جو بھی حکم کا درجہ ہوگا وہ اختیار کریں گے۔ یہ جو بات میں نے آپ کو کہی نا کہ حکم نہ بول لیں، یہ میں ہیومن سائیکالوجی کی بات کر رہی ہوں کہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، اپنے اوپر لے لیجئے، میں آپ سے کہوں اٹھیے، اٹھیں آپ یہاں سے، تو آپ کو برا لگے گا، ایک دم انا اندر آ جاتی ہے یہ مجھے کیوں اٹھا رہی ہیں، تو میں اگر کو اٹھنا چاہیے، جیسے اب ہم یہاں سے فارغ کہتی ہوں چلو سب چلے جائیں، آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کہیں گے یہ کیوں ایسے کہہ رہی ہیں کہ جانا، تو میں کہوں چلے اب ہم سب چلے، چلے اب چلتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے، تو یہ مراد تھا۔ بہت اچھی بات انہوں نے کی، میں اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کروں۔ آپ دیکھیے کہ آپ جب دنیاوی کاموں پہ بچوں کو منواتے ہیں تو دین کے کاموں پہ کیوں نہیں منوا سکتے، یہی کہا نا آپ نے۔ سمپل سی مثال، ہر گھر میں ہفتے میں 5 یا 6 دن تو ہوتی ہے، اسکول اٹھا کے بھیجتے ہیں، اسکول جاتے ہیں بچے، تو نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو یقین ہے کہ اسکول میں نہ گیا تو مارا جائے گا، نام کٹ جائے گا، روز روز چھٹیاں ہوں گی، نماز کے لیے یہ یقین نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات بھی انہوں نے بہت اچھی کہی کہ بچے کو نماز کے لیے کہنے کی بجائے خود نماز سے پہلے اٹھے، گھر کا ماحول بنائیں، لائٹیں کھول دیں، کسی بات دیکھیں، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں، بلکہ اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ جس گھر میں نماز کے وقت پہ آپ کسی کو نماز کے لیے نہیں کہہ سکتے، آپ اس کے مخلص نہیں ہیں۔ اور فجر کی نماز نہ پڑھنا اس بات کا اظہار ہے کہ آج کے دن آپ نے اپنا سٹیرنگ شیطان کے ہاتھ میں دے دیا۔ نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے جب ہم فجر کی نماز مس کرتے ہیں نا، ہم اپنے اس دن کی ساری نیکیوں کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بعد میں پڑھ تو لیتے ہیں، کب پڑھتے ہیں آپ؟ جب سورج نکل آتا ہے۔ جو کام آپ نے صبح میں دن چڑھتے ہوئے کیا، پہلا کام اللہ کی نافرمانی کا کیا نا، سارا دن آپ کے ورکرز آپ کی بات کیوں مانیں، آپ کی ماسیاں آپ کی بات کیوں مانیں، آپ کے بچے آپ کی بات کیوں مانیں، کیوں نہیں مانیں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کی نہیں مانی۔ ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا، خلاصہ تھا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کو کتنے اچھے طریقے سے قائل کیا اس بات پہ، نماز پہ۔ عورت پکی نمازی تھی، میاں بھی نماز پڑھتے تھے اور کام پہ جب جاتے تھے تو لیکن ڈیلے کر دیتے تھے، तो वो जब पूछती थी तो वो उज़र बताते थे, ये है वो है दिस एंड दैट है। कुछ इसी किस्म का मामला हुआ कि एक दिन उसने उनको फ़ोन पे कॉल की तो कहती हैं होल्ड करें ज़रा। तो काफ़ी लंबा होल्ड कराया ना, आधा पौना घंटा करके कुछ करा के लेट हुआ। तो बाद में जब उन्होंने उनसे बात की तो वो मियाँ से बड़े गुस्से में थे, तो कहने लगी क्या हुआ, मैंने आपसे बात कर तो ली है ना, क्या मतलब है। कहने लगी जब आप कहते हैं कि मैंने नमाज पढ़ तो ली थी ना, तो आज आपको मेरे देर से रिस्पॉन्ड करने पे गुस्सा आ रहा है, तो आप सोचें कि जब नमाज आप देर करते हैं तो उस वक्त अल्लाह को आप पे कितना गुस्सा आता होगा। बात समझ आ गई, दिल को छेड़ें। और मैं अक्सर एक जुमला बोलती हूँ कि आपके बच्चे या हम खुद, बच्चे इसलिए बोल देती हूँ कि अक्सर का इशू बच्चे हैं, हालांकि हम खुद वो काम नहीं कर रहे होते जो बच्चों से कराना चाह रहे होते हैं। आप चाहते हैं ना कि अगर आपके बच्चे 5 वक्त के नमाजी हों तो आप हो जाएं, आप चाहती हैं आपकी बेटियां अच्छे कपड़े पहने तो आप पहन लें, आज से शुरू करें ना, अभी छोटे बच्चे हैं। अब वो बिगाड़ लिए आपने तो फिर आप उनके साथ कट ऑफ कीजिए, आप अच्छे तरीके से मामला करके देखिए। हमारी एक साथी हैं, तो वो शादी जब उनकी हुई तो मियाँ काफ़ी मतलब दीन की तरफ रुझान तो था ही, हो रहा था, लेकिन नमाज के मामले में वो इस तरह से थे कि घर में पढ़ लेते थे या देर सवेर करके, जिसको लोग कहते चलो शुक्र है पढ़ते तो हैं। हालांकि याद रखिए कि 5 वक्त नमाजी होने का मतलब ये नहीं कि बहुत रिलीजियस हैं, 5 वक्त नमाजी होने का ये मतलब है कि आप मुसलमान हैं, ये तो लीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन है। खैर अल्लाह ने उस बच्ची को उम्मीद दिला दी, प्रेग्नेंट हो गई। जब वो प्रेग्नेंट थी तो वक्त जब करीब था वट एवर, तो कहने लगी कि मैंने अपने हस्बैंड से एक बात की है कि देखें कुछ देर के बाद बच्चा हमारे पास होगा, क्या आप ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा बड़ा होकर ये बोले कि मैंने जब से आंख खोली है मैंने अपने बाप को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते देखा है। कहते मैं चाहता हूँ। कहा फिर आज के बाद ये होगा। वो उस दिन से वो बाप इस नीयत से कि ये अब बच्चा बोल तो नहीं सकता लेकिन देख तो रहा होता है ना, मैं इसलिए मस्जिद में नमाज जाके पढ़ रहा हूँ कि मेरा बच्चा कल ये ना कहे कि मेरे अब्बू पहले नहीं पढ़ते थे। चेंज आ गया जिंदगी में। इसी तरह का एक वाक्या खुद मेरे अपने सामने किसी के साथ हुआ, घर में थे और नमाज की तैयारियां थी, तो कहा जमात करेंगे या क्या होगा, सिस्टर्स पढ़ने लगी, तो जो घर का बच्चा था कोई ऐसी बात हुई तो लोगों ने कहा कि बेटा आप लोग भी आ जाएं, बच्चे थे यंग लड़के थे थोड़े थोड़े ना, तो वो एक बच्चा बोला कहता मर्द तो नहीं नमाज पढ़ते, मतलब ये है कि माँ को तो पढ़ते देखते थे ना तो बाप को कभी पढ़ते ही नहीं देखा, तो आंटी लड़के तो नहीं नमाज पढ़ते होते। दो बातें, अब देखिए माँ के लिए कितनी एम्बेरेसिंग बात थी, जो बच्चा अपने बाप को नमाज नहीं पढ़ता देखता, हो सकता है उसका बाप 5 वक्त मस्जिद में जाके पढ़ता होगा, हम नहीं कहते कि वो नहीं पढ़ता, लेकिन बच्चे ने नहीं देखा। इसीलिए फ़र्ज़ और सुन्नतों का फ़र्क किया गया ना, कि फ़र्ज़ मस्जिदों में पढ़ें तो सुन्नतें नफिल घरों में पढ़ें। सारी बात का खुलासा है कल जो चाहते हैं कि ये करें आज कर लें। छोटी सी एक स्लाइड थी जो हमारी पेरेंटिंग ए टू जी की सीरीज थी ना, उसमें शेयर की थी कि अगर आप ये कहते हैं ना कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते तो डोंट वरी, लेकिन वो आपको देखते ज़रूर है, जो आप करेंगी वो करेगा। और अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लें, हम कभी अपने बच्चों के बारे में ये नहीं चाहते कि वो नमाजी ना हो, वो झूठ बोले, वो डिले करे, वो गलत कपड़े पहने। आप जिस हाल हुलिये में बाहर जाती हैं क्या आपकी बच्ची उसमें नहीं जाएगी, पेट में बच्ची है क्या वो बच्ची माँ के साथ गीबतों की आदी नहीं हो जाती, होती है ना। तो सीधी सी बात है आई गो वेयर माई मॉम गोस, इसी पे आज के सेशन को क्लोज करूँगी कि बच्चे उधर ही जाएंगे जिधर आप जाती हैं। और बच्चों को पहले बिगाड़ना फिर ठीक करना, ऐसे ही है कि पहले इस पे खाने के धब्बे डालें घी वाले साले डाले, फिर उसको जाके ब्लीच डालें धोएं, ये ऐसा नहीं रहेगा जैसा ये नया। खुशकिस्मत है वो लोग जिनके बच्चे भी छोटे हैं। जी
आपने ये अभी वर्ड बोला और पहले भी बोला कि माए नमाज पढ़े तो बच्चे देख के पढ़ते हैं, ये आज का ये दौर है। मैं किसी की नहीं अपनी बात करती हूँ कि मैं बचपन से नमाज पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा खानदान बिल्कुल नमाजी था और मेरे वालिद साहब भी असर की नमाज पढ़ते हुए अल्लाह ताला उनकी जान दुआना कब्ज़ किए, और मेरी बेटियाँ सारी पढ़ती हैं लेकिन मेरे बेटे दोनों नहीं पढ़ते।
मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं, आपके हस्बैंड पढ़ते हैं?
हाँ वो पढ़ते हैं लेकिन अब कभी कई करते हैं कभी पढ़ते हैं, कभी कभी मेरा झगड़ा भी हो जाता है उनके साथ के उठो अब मैं बिल्कुल 2-4 दिन आपने ना पढ़े, मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ 3:30 बजे मैं उठती हूँ और फजर की नमाज पढ़ के 7 बजे तकरीबन कुरान पाक उस वक्त तक पढ़ती रहती हूँ, लेकिन वो सोए पड़े होते
मैं कह कि अगर मर्द को जायज है कि औरत गलत है तो उससे बिस्तरा अलग कर ले, तो औरत को भी तो दीन वाली है तो बिस्तरा अलग कर लेना जायज है ना।
बिल्कुल जायज।
मैं कह आज के बाद आपके अलहदा मेरे अलहदा ठीक है, खाने पीने तक ठीक है, कर 4 दिन हो गया कि उठते हैं मेरे साथ, मतलब
काम आ गई ना धमकी। रियली ये बात सच है,
पूछ रहे थे कि क्या पढ़ूंगा मैं, तहज्जुद पढ़ सकता हूं, पहले अपनी उम्र की नमाजें पूरी कर, ये सवाल सही था या गलत मैं पूछ रही थी। मैं क्या पहले 1000 नमाजें पढ़े, पढ़ते रहे जो मैं है कितनी को पढ़ूंगा, मैं कह वो ऐसे कि आप पढ़ते रहे अल्लाह ताला पता नहीं कौन कौन सी कज़ा जो कबूल कर ले, तो नफल छोड़े और ये चीज छोड़े कि मैं तहज्जुद पढ़ूँ। तहज्जुद कज़ा इंसान वो तब तक एक मतलब कि हमारी एक अलहदा इबादत है, तो जब आपकी नमाजें कज़ा रहती हैं तो फिर हो सकता है, ये मैं आपसे भी सवाल भी कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ
जो मैं कहूँगी उसको सुन रहे हैं, गौर से सुनेंगे। देखिए आप इनका सवाल सपने मेरे लिए रिकॉर्डिंग में भी आ ही गया होगा। देखिए जो बंदा नमाज पहले नहीं पढ़ता था उसको तो आज की भी नमाज बड़ी मुश्किल है ना, 5 नमाजें भी मुश्किल होंगी ना, आदत नहीं होती, वज़न ना उठाएं तो थोड़ा भी उठाना मुश्किल है, ना चले हो तो चलना भी मुश्किल है ना। अब जब आप उनको साथ पिछली नमाजों पर लगाएंगे तो ये भी छोड़ देंगे। जो वो कह रहे थे ना वो ठीक कह रहे थे, फ़र्ज नमाजें शुरू कर दी, जो नमाजें पक्का पता है ना कि नहीं पढ़ी, मतलब कल सुबह फजर नहीं पढ़ी थी, इस्लाम में नमाज कज़ा नहीं होती। हमारा इंशाल्लाह ये मंडे को एक टॉपिक आ रहा है, बहुत अहम है, हमारी नमाजें, ये टॉपिक है गुजरांवाला के दर्स में कि हमारी नमाजें, यानी उसमें हम इंशाल्लाह नमाज से मतलब काफ़ी डिफरेंट थिंग्स को देखेंगे, उसमें ये बात है कि बेअसर क्यों हो गई हैं, आज हमारी नमाजों का असर क्यों नहीं दिखता, सो ऑन। हर वो नमाज जिसका आपको मुझे पता है ना कि मेरी कज़ा हुई है वो तो पढ़नी है, वो तो डेफिनेट पढ़नी है, अल्लाह ना करे फजर कज़ा ही उठते ही पढ़ लें, आइडियल सूरत तो ये हो गई ना। लेकिन अब पिछली पता ही नहीं कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, अब पक्की 5 हो जाएं, सच्चे दिल से तौबा कर लें, कसरत से नफिल पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, मतलब जो भी नमाजें पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनको इससे बदल देगा। आज उनको ये खुशखबरी सुना दें जाके, ठीक है। चलिए जी, जज़ाकल्लाह खैर, टाइम पूरा हो गया। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।